जय माँ, डाली जोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र उसकी 50वीं वर्षगांठ पर 50th एनिवर्सरी गोल्डन जुबली, क्योंकि वो एक कम्यून है तो कम्यून के बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी है। आध्यात्मिक कम्यून का करेक्ट वर्ड है नहीं प्रॉपर हिंदी में, कम्यून ही एक्सेप्टेड वर्ड माना गया है, लेकिन मठ संघ आश्रम इस प्रकार के शब्द प्रचलित रहे हमारे यहाँ। लेकिन सच पूछो तो कोई भी श्री अरविंद के योग में अप्लाई नहीं करता है। श्री अरविंद ने स्वयं कहा है कि मैं यहाँ पर मठ इत्यादि बनाने नहीं आया हूँ, आई हैव नॉट कम हियर टू क्रिएट मठ। क्यों? क्योंकि मठ से हमारे अंदर सन्यासियों की कल्पना आती है। सन्यासी जब कम्यून बनाते थे तो वो मठ बनाते थे, उसके पुराने समय में हिमालय में मंगोलिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे मठ बनाते थे और वो नॉर्मली साधारण जनमानस के स्थान से दूर होते थे, और वो दूर इसलिए होते थे कि आप वहाँ एकांतिक साधना कर सकें। और इसलिए श्री अरविंद कहते हैं एक जगह कि अगर निर्वाण तुम्हारा लक्ष्य है, मठों में जो लोग रहते थे सन्यासी उनका लक्ष्य होता था निर्वाण या परम शांति, अलग अलग वर्ड मोक्ष, तो वास्तव में कम्यून अपने आप में एक विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि अगर आप कम्युनिटी में रह करके एक व्यक्तिगत निर्वाण खोज रहे हो सन्यास के मार्ग से जहां आपको कट ऑफ होना है, तो कम्यून तो आपको बांधेगा किसी न किसी रूप में। तो एक चीज ये हमको समझनी है कि श्री अरविंद के योग में मठ या उस तरह के आश्रम जो जहां पर हम देखते हैं, जो मॉडर्न कंसेप्ट है कि वो आश्रम चले गए वहां सबसे दूर हो गए, लेकिन श्री अरविंद आश्रम को ओरिजिनल कंटेक्स्ट में कहते हैं कि यहाँ एक अलग प्रकार का श्रम किया जाता है, एक श्रम है। तो पुराने समय जब हम आश्रमों में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सारी एक्टिविटीज वहाँ रिप्रेजेंटेड होती थी, वहाँ अनेकों प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी, वहाँ गुरुकुल होता था, वहाँ पे जो जो संभावना है मानव जीवन की वो वहाँ पर होती थी, रिप्रेजेंटेड होती थी। और वही श्री अरविंद आश्रम में जो पहला मॉडल है हम सबका रोल मॉडल, वो श्री अरविंद आश्रम है। तो श्री अरविंद आश्रम को अगर हम देखें और उसको रोल मॉडल बनाएं, तो पहली चीज है कि लक्ष्य स्पिरिचुअल कम्यून का अलग है। मैं स्पिरिचुअल कम्यून वर्ड यूज कर रहा हूँ एक अंडरस्टैंडिंग की, एक कम्युनिटी जो एक आध्यात्मिक लक्ष्य से प्रेरित है, तो पहली चीज है कि उसका लक्ष्य अलग होना चाहिए। लक्ष्य क्या है उसका? उसका लक्ष्य ये नहीं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं या कितना हम समाज सेवा कर रहे हैं या हमारा कितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कितने हमारे पास चीफ मिनिस्टर ये सब आ रहे हैं। स्पिरिचुअल कम्यून का ये लक्ष्य नहीं है। स्पिरिचुअल कम्यून का लक्ष्य है जो आध्यात्मिक लक्ष्य उसके सामने रखा गया उसको प्राप्त करना। बहुत सारे से कम्यून हैं अभी भी भारतवर्ष में जो जिनका लक्ष्य अंत में एक साल्वेशन है, एक मुक्ति है, मोक्ष है, अलग अलग नामों से कहते हैं। ऐसे कम्यून में आमतौर पर व्यवस्था ऐसे होती है, मैंने देखे कई कम्यून देखे मैंने तो, और एक चीज़ मैं पहले बता दूं, सब जगह मनुष्य एक जैसे होते हैं, कुछ लोग आप जहाँ जाएंगे आपको वही मनुष्य मिलेंगे। लेकिन उन कम्यून में क्या होता है, अधिकांश एक भोजन भंडार की व्यवस्था होती है, क्योंकि जो आपके बॉडी के फ्रेमवर्क के लिए जो चाहिए उतनी व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था है। अगर परिवार हैं तो परिवार के साथ आपको खान पीन जैसे सब्जी भाजी मिलने की व्यवस्था होगी और मेडिकल की एक व्यवस्था होगी। जनरली मेडिकल को कम्यून का पार्ट नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें भी सेवा देते हैं लोग। और जो गेस्ट आएंगे उनके रहने की व्यवस्था होगी और गुरुजी होंगे और गुरुजी का सत्संग होगा, सत्संग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक एवरेज कम्यून ऐसे ही होते हैं, या मंदिर होगा जहाँ आपकी पूजा होगी, अर्चना होगी, उपासना होगी, ध्यान के लिए आपको स्थल है। तो ये एक साधारण स्पिरिचुअल कम्यून्स हैं। कुछ कम्यून्स ने इसमें अब ओरिजिनली कम्यून का यही लक्ष्य था, लेकिन कुछ कम्यून्स ने अब इसमें एक और चीज़ जोड़ दी है, मानव सेवा। अब ये मानव सेवा ओरिजिनल कम्यून्स के कंसेप्शन में नहीं है, पर जुड़ी है। जुड़ी इसलिए क्योंकि अब मनुष्य के अंदर एक सेवा का पार्ट है और सेवा से वो फ्लरिश करता है, और ये जो कम्यून्स होते हैं उसमें बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, जो ये टिपिकल कम्यून है। प्लस मनुष्य इतना स्वार्थ में जीता है कि अगर उसको सीधा बोलो कि भगवान की सेवा, तो तो वो ना नर की सेवा करेगा ना नारायण की सेवा करेगा, वो सारे दिन की मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ इत्यादि करेगा। तो शायद इस भाव से स्वामी विवेकानंद ने स्वयं, हम देखते हैं कि कम्यून के साथ ये जोड़ा, नर की सेवा भी जोड़ दी, या जो सिख गुरु हैं उनके यहाँ गुरु का लंगर इत्यादि, ये एक कंसेप्ट आया। पर वास्तव में ये एक मेन पार्ट नहीं है कम्यून का। एक कम्यून की पहचान इससे नहीं है कि वो समाज सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, अगर समाज में कोई विपदा आती है तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ सुनामी आई तो अपने अपने ढंग से सबने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुख्य लक्ष्य उसका आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति है। तो एक कम्यून का ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से चलता है। चूंकि श्री अरविंद आश्रम में, श्री अरविंद योग में, ये लक्ष्य की प्राप्ति, भगवान से जुड़ने की जो प्रोसेस है, केवल सोल की नहीं है, प्रकृति की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब में हमको भगवान को जोड़ करके भगवान को प्रकट करना है। क्या अर्थ हुआ? पेंटिंग करते हैं आमतौर पर, साधारण योग के लक्ष्य में केवल आत्मा मेडिटेशन द्वारा, भक्ति द्वारा या कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा आत्मा को जुड़ना है। लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो भगवान को प्रकट करेगा, अभिव्यक्त करेगा, ये कंसेप्शन नहीं है। और हर प्रकार का काम, वो लिखने का काम, स्कूल में कोई अगर आपकी सेवा है, मेडिकल का काम है, पेंटिंग है, विज्ञान है, सब तरह के काम। लेकिन श्री अरविंद के योग में चूंकि लक्ष्य है भगवान की अभिव्यक्ति, यानी इस संसार को हम माया के रूप में नहीं देखते हैं, हम इस संसार को भगवान के लीला और लीला के द्वारा भगवान अपने आप को उत्तरोत्तर प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए श्री अरविंद आश्रम का जो कम्यून है, जो कम्युनिटी है, उसमें हम देखते हैं कि हर तरह की एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड है, और भविष्य में भी कोई नई चीज आए तो हमें खुला रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माता जी चाहती थी यहाँ पर एक स्टूडियो बने, स्टूडियो में फिल्म स्टूडियो बने, और उन्होंने उसका नाम भी दिया था एट द सर्विस ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ, क्योंकि वो हर तरह की एक्टिविटी, लेकिन वो कैसे, आश्रम का क्या सिस्टम है, कोई चीज़ मेंटली करके नहीं कि इम्पोज कर दी जाए, क्योंकि ये नर और नारायण के मिलने से ये डिविनाइजेशन होगा। पहले नर के अंदर अभिप्सा, नारायण तो डाल रहे हैं सबके अंदर भगवान ये अभिप्सा, लेकिन कौन उसको पकड़ेगा? तो माँ सबको ये ऐसे समझो कि सबके अंदर, अरे इसकी अभिप्सा करो करो, नहीं कर रहा है कोई, लेकिन कोई होगा जो कैच करेगा। जब वो कैच करेगा तब उसके और डिवाइन मदर दोनों के संपर्क से उसका डेवलपमेंट होगा। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये प्रारंभ कैसे हुआ, कि कोई डंबल्स प्रैक्टिस करने के लिए उसने माँ से पूछा। माँ ने पहले पूछा कि मुझे दिखाओ डंबल्स क्या होते हैं, कैसे करते हो तुम लोग, कितना वजन होता है, पूरे डिटेल में जाके। फिर माँ ने उसकी परमिशन दी, फिर फुटबॉल खेलने की किसी के मन में आई, अलग अलग तरह से करते करते अंत में कई वर्ष नहीं, शायद डिकेड के बाद माँ से किसी ने पूछा, माँ ये फिजिकल एजुकेशन का इतना जो तामझाम है ये क्यों है? तब माँ बताती, हाँ आज तुमने पूछा है, ये सेल्स के अंदर चेतना जगाने के लिए। तो अब एक, अगर एक फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स इत्यादि की जो एक्टिविटी है उसका भी प्रयोजन पहले हमको तैयार करना भगवान के लिए, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में श्री अरविंद लिखते हैं कि हमारे पास हमारी कई गुण हैं जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत काम आते हैं, जो स्पोर्ट्स के थ्रू हम सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप सीखते हो कि कभी हार कभी जीत, तो आपके अंदर समता का भाव, सहिष्णुता का भाव, बहुत सारी चीज़ें, जेनरोसिटी, टीम स्पिरिट, साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, जहाँ आप कैसे एंड्योर करोगे चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए सहयोगी हैं। और जब हम आध्यात्मिक जीवन में उठने लगते हैं तो उस नई दृष्टि से, नई शक्ति के द्वारा हम उसी खेल को खेलेंगे, ये ओरिजिनल इसका पर्पस है। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि इस कम्यून में जो श्री अरविंद माता जी के उस पर बेस्ड हैं, कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए? एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ये आर्टिफिशियली नहीं कि चलो एक स्टेडियम बना दो, चलो एक, ये प्रोसेस जहां होती है, जहां आर्टिफिशियली हम करते हैं, तो वास्तव में इसका मतलब है कि कोई तैयार नहीं है, लेकिन आपने सुपर इम्पोज कर दी। सुपर इम्पोज करने से क्या होता है कि लोग तैयार नहीं हैं। किसी ने कहा है कि यहाँ पर स्कूल चला दो, आपने नाम रख दिया श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल, लेकिन वहाँ लोग तैयार नहीं हैं, लोगों के अंदर अभिप्सा नहीं है, तो स्कूल के अंदर क्या होगा? फिर वो बिल्कुल वही पुराने ढरे पर चलेगा, लेकिन नाम होगा श्योरबिंदो स्कूल। तो ये जानने की जरूरत है कि ये जल्दबाजी का काम नहीं है कि खूब सारे हम लोग ये भी बना दें वो भी बना दें और सब बना के कहें ये इंटीग्रल योग हो रहा है। नहीं, पहले वो होना चाहिए जो योगनिष्ठ है। तो इसलिए श्री अरविंद कहते हैं लंबे समय तक कम्यून्स कैसी रहेंगी, उनके अंदर इंडिविजुअल डेवलपमेंट इनटू द नॉस्टिक बीइंग, सारे जीवन के अनुभवों को लेके आश्रम का विकास ऐसे हुआ है। अगर आप आश्रम में देखेंगे तो प्रारंभ में डिपार्टमेंट्स नहीं है, यहाँ भी वैसे ही प्रारंभ हुआ कि आपके पास डाइनिंग रूम है, आपके मेडिटेशन हॉल भी नहीं है, प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत बाद में आया है। और ये सारी एक्टिविटी जैसे जैसे लोग प्रेरित हुए, किसी का मन किया कि मैं पेंटिंग करूं, माने एनकरेज किया, कोई पोइट्री लिखते थे तो शेरविंद ने एनकरेज किया। तो इस प्रकार से एक कम्यून के अंदर श्री अरविंद के नाम पर आधारित जो स्पिरिचुअल कम्यून होगा उसमें सब प्रकार की संभावनाएं पोटेंशियली रखी जा सकती हैं, लेकिन प्रोसेस उसका आर्टिफिशियल नहीं है कि आपने जबरदस्ती एक जिम खोल दिया। एक कोई ना कोई व्यक्ति होगा, आएगा, अगर समय सही है तो आएगा, आपको वो एटमॉस्फियर, वो कहेगा मैं यहाँ ये करना चाहता हूँ, कोई होगा जो पेंटिंग की में रुचि लेगा, तो वो सब फिर उस कम्यून का हिस्सा बनता जाएगा। तो इट इज़ ए नेचुरल ग्रोथ अंडर द डिवाइन प्रेशर ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड नॉट एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। अब नेचुरल ग्रोथ अंडर द प्रेशर ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस जब ये आता है तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, मान लीजिए एक कम्यून में 20 लोग हैं, छोटी कम्यून, तो अब 20 में से सारे लोग डिवाइन कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं एस्पायर कर रहे होंगे, किंतु एक दो या केवल एक भी, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कोर है। और ये श्री अरविंद के सेंटर्स, सोसाइटी सेंटर्स में भी यही बात लागू होती है, दैट्स अनदर काइंड ऑफ कम्यून। हालांकि वो कम्युनिटी लिविंग नहीं है, थोड़ा अंतर है, लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं और सोसाइटी सेंटर में आते हैं मिलने के लिए, लेकिन ऐसी ऐसी जगह, कुछ एक जगह ये भी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए और ये होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो नॉस्टिक जीवन है जिसको डिवाइन लाइफ का ग्रैंड एक्सपेरिमेंट है, वो केवल आश्रम में नहीं होगा, आश्रम उसका केंद्र है, किंतु कई जगहों पर श्री अरविंद दिव्य जीवन में बताते हैं, द लाइफ डिवाइन में, कि आइलेट्स बनेंगे, मतलब कई जगहों पर छोटे छोटे ऐसे कम्युनिटीज बनेंगी और प्रयास हो रहे हैं। मैं जानता हूँ इसको, बहुत ही अपूर्ण से प्रयास करते हैं लोग, नहीं कर पाते हैं, पर ये चेतना के अंदर आ गया है कि हम लोग ऐसी कम्युनिटी लिविंग हो जहाँ हमारा केंद्र ये योग है। और योग अगर है श्री अरविंद का योग, तो केंद्र कौन है? श्री अरविंद माता जी। तो कम्युनिटी का ये एक आइडिया है। अब ये जो कम्युनिटीज बनेंगी, तो इसका क्यों बन रही हैं? क्योंकि संसार अभी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है स्पिरिचुअल लाइफ को या स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को, इसलिए कम्यून की जरूरत होती है। समय तो एक ऐसा आना चाहिए जब पूरा संसार माताजी का आश्रम बने, माने कहा भी है, लेकिन दोनों सीमा श्री अरविंद दे नो दिस एज प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। वो कभी, एक श्री अरविंद का वर्ड है स्पिरिचुअल रियलिज्म, तो कभी वो ऐसे नहीं कर देते जैसे कई लोग हैं जो बाहर में हम चलाएंगे श्री अरविंद के नाम पर स्कूल, सीधा वो कहते हैं हम फ्री प्रोग्रेस होगा, फीस नहीं होगी। आप नहीं कर सकते हो ऐसे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, आश्रम में ये पॉसिबल है, वहाँ पे आपको मुख्य चीज केंद्र में रखनी है, और मुख्य चीज क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, स्टार्ट विद दैट, फिर आप बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। आप सीधा फ्री प्रोग्रेस करोगे तो इट डजंट वर्क आउट, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, कहीं कहीं पर हो सकता है। तो स्पिरिचुअल रियलिज्म को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मुख्य चीज़ ये होती है कि एक ग्रुप, जो संघ होता है, जब एक व्यक्ति अकेला अपने घर में साधना करता है तो उसको वो समाज से सपोर्ट नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर कुछ परिवार हैं जो जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे परिवार, पर जनरली ये समस्या आती, यहाँ तक आती है जो मैंने देखी है कि जब इंडिविजुअल साधना करते हैं घरों में, वो शेयर नहीं कर सकते हैं अपनी बातें, और इससे बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड टर्नड वाइफ नहीं है, या वाइफ से वर्षा है, तो कितना अधिक परिवार के अंदर एक इसी बात को लेके एक स्किज्म होगा, ये बोला नहीं जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष से हम लोग चीज़ों को स्वीकार करना जानते हैं, लेकिन ये अंदर में कहीं ना कहीं एक कचोट पैदा करेगा। और आप उसको सुलझाओगे या आप अपने अंदर की यात्रा को पूरी तरह ले जाओगे? तो इस कारण कम्यून लिविंग का एक बहुत सुंदर ये व्यवस्था है, जिसमें जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक बेसिक पर्पस है कम्यून का। मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो यज्ञ स्थल ही है, लेकिन एटलीस्ट ताकि आप जो भी वहाँ पे लोग गए हैं अब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जैसे पहले होता था इसमें कम्यून में, अब भारतवर्ष की ये स्ट्रेंथ थी बाय द वे कम्यून, जॉइंट फैमिली। तो उसमें क्या होता था, जो पुराने समय कम्यून थे, अभी भी जो अगर आप सिख गुरुओं ने जिस तरह के बनाए थे, अभी भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करते हैं साझा चूल्हा। तो साझा चूल्हा जैसे हमारी जो कलेक्टिव कुकिंग है, अब देखिए उसमें आप हर व्यक्ति अगर अपने भोजन में ही उसका पूरा समय जा रहा है, तो कुछ लोग हैं जो इसी को अच्छे से करते हैं लेकिन वो सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ और हैं कोई धान उगा रहा है, कुछ और है जो शिक्षा दे रहा है। तो इस प्रकार से कम्यून का जो नेक्स्ट लेवल है, हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को कम्यून में डालता है और लेकिन जो कुछ मिलता है सब लोग साथ उसको शेयर करते हैं। तो कम्यून में जो वर्ड आता है कम्युनिज्म, और शेरविन कहते हैं कि भविष्य डिवाइन कम्युनिज्म में है, ये कम्युनिज्म तो उसका असुर का डिस्टॉर्शन है। डिवाइन कम्युनिज्म में हम सब लोग आके, एक एक्सपेरिमेंट इसका ऑरोविल है, हम सब अपनी ऊर्जा डालते हैं लेकिन जब हम उसका शेयर करते हैं तो प्रसाद स्वरूप सब लोग शेयर करते हैं। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि मैंने ये ज़्यादा मेहनत की थी 8 घंटे, तो ये आदमी तो केवल बैठ के ये मेडिटेट कर रहा था या कुछ नहीं कर रहा था, इसको मैं भोजन नहीं दूंगा। आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बाई इट्स नेचर वो वहाँ आ गया है, कैसे आया है। लेकिन इसीलिए कम्यून के अंदर किसका प्रवेश, ये बहुत सोच समझ के चुनाव किया जाता था। कोई कम्यून में भाग के जीवन से आ रहा है, एस्केपिस्ट है। मुख्य चीज कम्यून के अंदर आने की जो क्वालिफिकेशन थी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, धन दौलत ये नहीं थी, उसका मेन था उसका सिंसेरिटी और पर्पस, वो क्यों आ रहा है। तो उसमें एस्पिरेशन और फेथ, ये दो चीज़ें जो जरूरी हैं। माँ के यहाँ अगर आप शेरविंद आश्रम ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो बड़ी सुंदर बात है। माँ कहती है दिस आश्रम इज मेंट फॉर दोज हु हैव फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ शेरविंदो। तो अगर आपको फेथ नहीं है तो दिस नॉट द प्लेस। क्यों? क्योंकि आपका कोर ही, जब आप कहेंगे नहीं हम तो एक जनरल स्पिरिचुअल नहीं, हम तो संसार बहुत कठिन है, तो सीमा शेरविंद के पास वो दृष्टि थी, वो देख लेते थे। और उसके बाद भी, क्योंकि जब आप एक कम्यून में रहते हो सकता है शुरू में आपको अच्छा लगे लेकिन बाद में वही आपकी समस्या आएगी। तो हर एक कम्यून में एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें आप और कम्यून एक दूसरे को परस्पर देखते हो। अब इसीलिए यहाँ पर शेरविंद आश्रम में 4-5 साल तक, 4 साल तो एक एवरेज है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में थोड़ा पहले, वो एक देखा जाता है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये है नेचुरल कि आप आए, आने के पहले आपके दिमाग में एक आइडिया है कम्यून के बारे में, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ आंतरिक रूप से भी बहुत प्रेशर होगा। किसी भी कम्यून में, कम्यूनल लाइफ इट्सेल्फ बड़ी कठिन होती है, क्योंकि आप कम्यून में वैसे नहीं कर सकते जैसे आप घर में करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कम्यून में भोजन का एक फिक्स टाइम होगा, प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। आप ये नहीं कह सकते मैं 10 बजे खाना खाऊंगा, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आप 10 बजे खाना खाओगे तो खाना आपके खाने के बाद कोई है जो उसको साफ करेगा। तो ये जो रूल बनाए जाते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर, कम्युन लिविंग के लिए, कई लोगों के लिए बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी लिविंग मतलब सम मिनिमम रूल्स विल बी देयर। तो कम्यून में जब लोग रहना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद वो कम्यून को सूटेड हैं कि नहीं है, और कम्यून उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि अब कम्यून का एक लक्ष्य है कि श्री अरविंद माता जी का योग, तो आप बोलोगे नहीं मेरे अंदर तो एक वृत्ति है, मैं जुआ खेलूंगा रोज रात को, बिना मुझे पबजी खेले हुए नींद नहीं आती है। तो अब हालांकि अब ये लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे हो, अगर आप बाहर करोगे इस चीज को तो कोई समस्या नहीं है, आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आप उसके अंदर क्या कर रहे हो ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि कम्यून के अंदर एक इंटरनल वायरिंग है, तो अब क्या होगा कि एक व्यक्ति अगर बहुत अधिक भटक रहा है, हालांकि कम्यून में बहुत फ्रीडम, शेयरविंद के बेस्ड कम्यून में बहुत फ्रीडम दी गई है, क्योंकि उसके बिना आप अपने डिफरेंट पार्ट्स को आना, डेवलपमेंट होना ये कठिन है। लेकिन उस फ्रीडम का केवल एक ही चीज़ थी जो एक प्रकार से, जिसमें जाने से थोड़ा सा एक ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती थी, और वो नहीं, वो बाद में जो 4 रूल दिए जिसको लोग कोट करते हैं, वो बहुत बाद में आए हैं। माता जी से जब बार बार पूछा तो माने कहा नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, नो पॉलिटिक्स एंड नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन इसका मूल क्या था कि कोई चीज़ें जो कम्युनिटी लाइफ को बुरी तरह डिस्टर्ब करती हैं, अगर वो कम्युनिटी लाइफ को के फैब्रिक को बिगाड़ देती हैं। तो अगर इस तरह का डिस्टर्ब, मान लो कोई व्यक्ति है, उसका काम यही है कि हर किसी को पोक करता रहे, हर चीज में कंप्लेन करता रहे, तो कम्युनिटी लाइफ में वो डिस्टर्बेंस है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति अपना शांति से काम करना चाह रहा है, उसको ग्रोथ करनी है, तो वो अपने अंतर्मुखी होकर के, अब लोग आके उसको जबरदस्ती होती है, जैसे बाहर में आदत होती है कि हम बात करेंगे, जब मर्जी आएंगे, जब मर्जी जाएंगे। तो ये स्पिरिचुअल कम्यून्स में तो और अधिक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि ये डिसिप्लिन आप पर कोई इम्पोज नहीं कर रहा है, आपको कोई, आप नियमबद्ध नहीं हो कि अगर आप नहीं आओगे आपकी सैलरी कटेगी। क्योंकि एक कम्यून में ना सैलरीड एम्प्लॉई है, स्पिरिचुअल कम्यून की मैं बात कर रहा हूँ, ना कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, ना कोई आपको प्रमोशन मिलने वाली है। तो ये जो तरीके बाहर अप्लाई किए जाते हैं आपको डिसिप्लिन करने के लिए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ एक ही रिवार्ड है, आप कितना अपनी कॉन्शियसनेस में भगवान के करीब ग्रो करोगे, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, आपके अंदर शांति और जॉय आएगा। और एक ही पनिशमेंट है, अगर आप वेस्ट करोगे टाइम को, ऊर्जा को, जिस भी रास्ते जाना हो जाओगे, फ्रीडम है इसकी, लेकिन आप उसमें ग्रो नहीं करोगे, आप एजिटेटेड होगे, आपके अंदर क्रोध, भय, ये सब आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब आप इस चीज को कम्युनिकेट करने लगते हो कंटेजियन की तरह। अब इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे एक जगह शेरविन ने, अब कई मानव वृत्तियां हैं, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात है, अब ये एक अल्टीमेट चीज है, बायोलॉजिकली रूटेड है। तो शेरविन कब कहते थे कि नहीं, द पर्सन शुड गो अवे, हालांकि उन्होंने कोई इंस्टेंस में भी उन्होंने निकाला नहीं है किसी को वो खुद लोग चले, जब इतना अधिक होता था कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कम्युनिटी में। कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये नहीं कि वो देख रहे हैं कुछ, अब जाके ऐसा व्यक्ति जो सीख कर रहा है इस तरह की चीजें, दूसरों को भी एंटाइस कर रहा है या जो भी, तब उनको कहना पड़ता था कि भाई दिस इज यू नो गोइंग बियॉन्ड अ पॉइंट। पर मानव प्रकृति जब रूपांतरण के लिए प्रस्तुत होती है तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर निकलती है। कई लोग ये कम्यून, स्पिरिचुअल कम्यून को वो कॉन्वेंट का वो समझ लेते हैं कि ये मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री में मैं तो मोनेस्ट्री में भी रह चुका हूँ, देखा है मैंने मोनेस्ट्री मतलब कॉन्वेंट की, वहाँ पर क्या होता है कि हिपोक्रेसी होती है। शेरविन ने फ्रीडम इसलिए दी है ताकि जेन्युइन चेंज हो, नहीं तो क्या होता है, आप बाहर से वो एक वाइट यहाँ पे पहन लेते, बाकी आप वो ब्राउन और जो भी पहनते हो ब्लैक, और आप सब सिस्टम मदर सब कहते हो, फिर उनके ब्रदर आते हैं, फादर आते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये आई नो दिस वेरी वेल बीइंग पार्ट ऑफ दैट, एवरीबडी नोज। तो ये हिपोक्रेसी नहीं आए, इसलिए फ्रीडम दी गई है ताकि आप पीठ पीछे हर तरह की चीजें कर रहे हो और आपके इससे क्या हो रहा है, पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही है, एक अंदर से भी आप लिंक्ड हो और फिर आप यू में, तो ये इनर इवोल्यूशन जो है वो आपकी अपनी सिंसेरिटी। लेकिन एक लाइन होती है हर एक कम्यून में, इवन ऑरोविल के विषय में माने बताया व्हेन दे शुड बी सेंट अवे, तो उसमें ताकि कोई अगर शराब पी के मान लीजिए चिल्लाना शुरू कर दे, आदत हो जाए, वो किसी घर में आ जाए, होता है ना, यहाँ भी एक थे सज्जन शराब पी के, वो कभी क्लास में आ जाए, वो मुझे रोक करके वो किसी को गाली देना शुरू करते थे। मेरे साथ तो उनका ऐसा कुछ हो गया था कि बस वो जहाँ मुझे देखते थे खड़े हो जाते थे सामने, हम हरियाणा के जाट हैं आपको नहीं जाने देंगे, तो हम गुस्सा, तो हम भी, मैं भी कह देता था, मेरा उस समय ईगो टेस्ट हो रहा था, मैंने देखा नहीं, मैं भी कह देता मैं मिलिट्री से हूँ, तुम क्या करोगे फिर माने अच्छा सबक सिखाया, ये तो बात मेरी कई बार हो चुकी है, हाउ शी शोड मी द वे कि भूमि बदलो, तो भूमि क्या, मैंने देखा ही हैज गॉट लव फॉर द मदर रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, इसलिए वहाँ घूमता रहता था, आश्रमाइड नहीं था लेकिन वो घूमता रहता था। एक दिन मैंने ऐसे बात बात में कहा कि आई वॉज सो हैप्पी टू सी यू नियर द आश्रम एंड यू सीम टू हैव लव फॉर द मदर, तो कहता है और है क्या देखने के लिए, और है क्या किसको प्यार करने के लिए, वो बहुत ठोकरे खा के सीखा था ये मुझे पता है लेकिन सीख गया था। तो मैंने कहा प्रणाम है तुम्हें धन्य हो तुम, ये तो यहाँ रहने वाले लोग जो शराब नहीं पीते उनको नहीं पता है। तो आई रियलाइज कि मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ, मेरे अंदर शिफ्ट हुआ, उसके अंदर शिफ्ट हुआ। तो कम्यून में जो इंटरेक्शंस होते हैं, डिसीशंस होते हैं, उस चीज को केंद्र में रख के किए जाते हैं। कम्यून एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है जहां 20 में से 15 लोगों ने डिसाइड किया एक हमको चलो एक बार खोल लेना चाहिए तो आप खोल लें, डेमोक्रेसी की ये समस्या है ना. अगर मान लीजिए कोई बोले, अब लोग कहते हैं ऑरवेल में डेमोक्रेटिकली अगर कोई बोलेगा ड्रग्स आर फाइन, तो यू विल से ड्रग्स आर फाइन. नो, बिकॉज देर इज एन एम ऑफ दैट कम्यून. तो उस एम से जो चीज मेल खाती है, क्या चीज मेल नहीं खाती है, तो उसके निर्णय कौन लेगा? तो कम्यून का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी? अब बड़ी इंटरेस्टिंग, एक भारतवर्ष में एक नाम होता है पंचायत. पंचायत क्यों होता था? पांच लोग होते थे. ये पांच लोग जो उस गांव के, जो जिनको आप ट्रस्ट करते थे और जिनको आप रिस्पेक्ट करते थे. रिस्पेक्ट क्यों? देवर मैन ऑफ इंटेग्रिटी. क्योंकि लोगों ने देखा था कि ये जो व्यक्ति हैं, इनके अंदर एक इंटेग्रिटी, इन पर हम भरोसा कर सकते हैं. तो कम्यून के जो लीडर्स होंगे वो अपने आचरण के द्वारा, इसलिए नहीं कि क्योंकि दे आर अब कई वर्षों से, या उनको एक विशेष एजुकेशन है, या एक पैसे हैं, उन्होंने खूब सारे धन दिया हुआ है, इसलिए नहीं, पर इसलिए है क्योंकि ये लोग अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, दे हैव प्रूव टू बी मैन ऑफ इंटेग्रिटी. माने एक और बताया कि ये किस तरह के लोग होने चाहिए. माने कहा है दे शुड बी डिटैच्ड इनवर्डली, और उनके अंदर ग्रीड और ये कामनाओं का खूब सारा, कि मुझे, अब सोचिए आप कम्यून में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस धन के प्रति जिसको ग्रीड हो, तो कैसे व्यवहार करेगा वो? फिर चीज़ों को अपने एंगल से, तो लस्ट फॉर पावर ये भी नहीं होना चाहिए. तो ये कौन से लोग होंगे जो बड़े एक प्रकार से योगनिष्ठ हैं? दूसरी चीज जो माने बताया, वो आर जेनरस इन देयर आउटलुक. जो कम्यून है वो एक ओवर डिसिप्लिन मिलिट्री वे में नहीं गवर्न किया जाता. आपको मनुष्य की विभिन्न समस्याएं हैं, उसकी खासकर एक स्पिरिचुअल कम्यून, आप एक मिलिट्री डिसिप्लिन लेके नहीं गवर्न कर सकते हो. अगर आप देखो माने किन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन दिया, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियंस को नहीं दिया है माने उनको दिया जो एक विशालता होनी चाहिए आपके अंदर, विशालता के साथ उदारता होनी चाहिए. और तीसरी चीज ये उदारता, जेनरस, और तीसरी चीज मैं कहती हूँ वो आर वाइड, वाइडनेस जरूरी है. तो इस प्रकार से कम्यून का संचालन उनके हाथ में होना चाहिए, जो एक प्रकार से इस बेसिक साइकोलॉजी को, जो इस योग में पथ पे चल रहे हैं, जिनको ये पता है कि इस पथ के किन किन पहाड़ों से, पर्वतों से आपको गुजरना पड़ता है, और वो मानव प्रकृति को समझ पाते हैं. तो ये है कम्यून का संचालन. बाकी सब गाइडेंस माता जी की. कम्यून में कोई चीज़ किसी को बिलोंग नहीं करती एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी. अभी आप किसी घर में रह रहे हैं आश्रम के, तो आप ये नहीं कह सकते तो मेरा घर है, कल को आप बोलें कि भाई मैं यहाँ 10, कह सकते हैं लोग टेक्निकली, ये एक्चुअल चीज़ है कि आप 10 साल किसी घर में रह रहे हैं, तो आपको टीनेंट का राइट होता है बाय लॉ. यहां तक किसी ने, आश्रम की बात है, कि कोई रहने लगा तो मैरिड था, लेकिन वाइफ उस समय नहीं आना चाहती थी, उसने कहा नहीं वो नहीं आना चाहती है, मैंने निर्णय लिया है. तो कहा ठीक है, 6 महीने बाद वाइफ आ गई. तो यही व्यक्ति जाके कहता है कि वो तो मेरी मैरिड वाइफ है, आपको उसके लिए घर भी देना है, हालांकि वो टर्न नहीं है, उसको कोई योगनिष्ठ नहीं है. तो इस कारणों से कई चीज़ें सोच समझ के करनी होती हैं. कई बार लोग इसलिए लिखित में लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वे टू रन. यू हैव टू फील फॉर द पर्सन. इसीलिए मैरिड लोगों को तभी एडमिट किया जाता है कम्यून में जब दोनों ही योगनिष्ठ हैं एज इंडिविजुअल्स. ये डिफॉल्ट का सिस्टम नहीं है कि 1+1=3. इट डजंट वर्क लाइक दैट आइदर वे. अगर दोनों योगनिष्ठ हैं, दे कैन बी एडमिटेड इनटू द कम्यून इंडिपेंडेंटली. क्योंकि वो फिर पहले भी हुए हैं, शेयरविंद के समय कुछ लोग कहते नहीं मैरिड पीपल कैन नेवर कम, दिस इज नॉट ट्रू. ए बी पुरानी थे, उनकी वाइफ थी, कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे आश्रम कंटेक्स्ट में, वाइफ थी या फ्रेंड जो लुक आफ्टर करते थे. तो ये दिस इज नॉट ट्रू कि मैरिड पीपल कैन नॉट लिव इन ए कम्यून, एटलीस्ट शेयरविंद रिलेटेड कम्यून्स में. बट यस, दोनों इंडिपेंडेंटली, फिर उनकी अपनी स्ट्रगल होगी, डिफिकल्टीज होंगी, दे हैव टू गो थ्रू इट, दैट्स देयर प्रॉब्लम. सो ये एक, क्योंकि कभी कभी कुछ कम्यून में बड़े स्ट्रिक्ट वो कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चूंकि एक फिजिकल रिलेशन, वाइटल इंटरचेंज मना किया गया है, मना इस सेंस में कि इट क्रिएट्स लॉट ऑफ टर्बुलेंस इनसाइड द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिविटी. तो कई कम्यून्स में एकदम वुमेन वुड नॉट बी देयर. अब ये क्या है ना, ये हम उस तरह का योग जो आप अय्यप्पा टेम्पल की वो सन्यासी सेलिब्रेट, ये शेयरविंद के कम्यून्स का ये पैटर्न नहीं है. क्योंकि ये दोनों की एनर्जीज अलग अलग ढंग से आती हैं, और वी हैव टू अंडरस्टैंड, आपको मास्टरी तो सर्कमस्टेंस के बीच में करनी है, आप भाग के मास्टरी नहीं होती है, बल्कि वो कभी कभी चीजें विकृत रूप ले लेती हैं, कभी कभी वो डिप्रेशन का रूप लेंगी, कभी कभी कोई छिप के चीजें होंगी, तो उसके बेटर है कि कम्यून में इन चीजों का एक नॉर्मल, हाँ, लेकिन हर एक व्यक्ति जो आएगा, मैन और ए वुमेन शुड बी योगनिस्ट. ये सेग्रीगेट करना इज नॉट इन द लाइट ऑफ मदर एंड शोरबिंदो. ये स्वामी विवेकानंद ने इस तरह की चीज की थी, जहां पे वो पुराना ट्रेडिशन है, हालांकि वो बुद्ध और स्वामी विवेकानंद ये पहले वो लोग हैं जिन्होंने विमेन को एडमिट किया, मानना पड़ेगा, संन्यास के कम्यून्स में, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका एक अलग स्थान होता था. टू दैट एक्सटेंट इट्स ओके, यू कैन हैव अ सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल इफ यू वांट, बट अगर आप बिल्कुल नहीं लोगे तो आपने अभी समस्या को टच नहीं किया है, और उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स अलग, एक टोटल जो इंटीग्रल ग्रोथ होती है, आपको हार्मनी संसार में रह के इस चैलेंज को स्वीकार करना है. तो ये सारी बेसिक चीज़ें कम्यून की, कम्यून के वातावरण में बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट, सोशलाइजेशन, कम्यून के अंदर रह के, खासकर ऐसे क्षेत्र जैसे ये स्पेशल क्षेत्र हैं डाली चोड़ा, तो उसका वो तो एज सच ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, परंतु ये पता होना चाहिए कि उसका पर्पस बिल्कुल भिन्न है. तो बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग ये सब दे आर नॉट मेंट अब आश्रम के अंदर भी, जो बाहर जाते हैं लोग, बाहर जाते हैं मिलके आते हैं, वो ठीक है, बट आश्रम के अंदर में बैठ करके आप चाय पार्टी कर रहे हो और खूब हर तरह की पार्टी कर रहे हो, जनरली दिस नॉट, और करते भी हैं लोग तो बड़े क्वाइटली, नोइंग दैट दिस इज द एटमॉस्फेयर, बहुत रिजिड, ये नहीं कि आप स्माइल नहीं कर रहे हो, सीरियस हो गए हो. और लास्ट में कम्यून के लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए आपस में, इसका मैं एक बस एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ. इस योग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टू सी द डिवाइन इन एवरी वन एंड एवरी थिंग. तो एक शब्द में पूछें तो आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारे पास आए, चाहे वो कम्यून के लोग हों या बाहर से लोग आ रहे हों, हमारा आचरण रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो लोग बोले अरे ऐसे होते हैं शेरविंद माता जी से जुड़े हुए लोग. और वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, जब हम उनके अंदर भी भगवान को देख पाएंगे. वो नहीं देख पा रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे अंदर ये डेवलपमेंट होनी चाहिए कि हम कम्यून में जो लोग आते हैं, रहते हैं, और जो बाहर से भी आते हैं, उनके अंदर हम डिवाइन को देख पाएं, देखने की चेष्टा करें. देख पाएं मतलब कि हम मान के चलें कि उनके अंदर डिवाइन है. और जो लोग जब हम ऐसा कर पाते हैं, तो नेचुरल है कि आने वाले लोग, हर चीज़ आती है, संपदा आती है, हार्मनी आती है. हार्मनी का आधार ही यही है कि हर किसी के अंदर डिवाइन है. आप इस चीज़ को हटा दीजिए तो हार्मनी नहीं आ सकती. द ओनली वे फॉर ए लास्टिंग यूनिटी इज टू सी एवरीथिंग इन द मदर एंड द मदर इन एवरीथिंग एंड एवरी वन. अगर हम इस चीज को खो देंगे तो धन कम हो जाएगा, हारमोनी कम हो जाएगी, कलह क्लेश होगा. तो हर किसी को ये बेसिक प्रैक्टिस तो करनी चाहिए. हर चीज के अंदर भगवान है, और हर चीज पूजा के भाव से, हर चीज सेवा के भाव से, क्योंकि इस कम्यून का प्रयोजन बहुत अलग है. ये कुछ विचार हैं जो एक स्पिरिचुअल कम्यून के लिए हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं. माँ श्री अरविंद से प्रेरित हैं ये विचार. बाकी सब कुछ लिखा है माँ श्री अरविंद ने श्री माँ के वॉल्यूम 13 में बहुत विस्तार से आश्रम के मैनेजमेंट के बारे में. वही नियम वही लगाए लागू होंगे. केंद्र में माँ को रखना है, कम्यून के जीवन में उनकी गाइडेंस के अनुसार, और व्यक्ति के जीवन में केंद्र में माँ और उनसे जुड़ा हुआ ये जो लक्ष्य है उसको केंद्र में रखना है. बाकी सब चीज़ अपने आप डेवलप करने लगेंगे. 6 माह